हरे कृष्णा गौतर कथा धनु से महाराज का स्वागत करेंगे। गौर कृष्ण महाराज जी जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ ही समय पहले महाराज का संन्यास हुआ, उसके बाद शायद दूसरा या तीसरा विजिट है मंदिर में, लेकिन हम चाहते हैं विजिट पड़े। और जिले में राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य हैं, उन्हीं से संन्यास भी प्राप्त हुआ है, तो एक बार जोरदार हरि बोल बोलते हैं, महाराज का स्वागत करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे
कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो घटोरपि तपस्विनो ब्राह्मसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता आश्रमापस्तदाशेते खल्वाश्रम विदम्बनः देवमायाविगूढांस्ताम् उपेक्षेतानुकम्पया गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो भटोरपि तपस्विनो ग्राम्यसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता आश्रमापश्यदाहेते खल्वाश्रम विडम्बनः देवमायाविगूढांस्ताम् उपेक्षेतानुकम्पया। हरे कृष्ण। गृहस्थस्य गृहस्थ जीवन में स्थित व्यक्ति का क्रिया त्याग, गृहस्थ के कर्तव्य को छोड़ना, व्रत त्याग, व्रतों तथा तपस्या का त्याग, बटो ब्रह्मचारी के लिए, अपि भी तपस्विना वानप्रस्थ के लिए, वह जिसने तप युक्त जीवन स्वीकार किया है, ग्राम सेवा, गांव में रहकर लोगों की सेवा करना, भीख मांगकर रहने वाले सन्यासी के लिए, इंद्रिय लोलता, इंद्रिय भोग में अनुरक्ति, आश्रम, आश्रम का अपसदा अत्यंत गर्हित ही निसंदेह एते एसम खलु निसंदेह आश्रम विडम्बना विभिन्न आश्रमों का अनुसरण करते और धोखा देते, देव माया विमूढ़ां भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्तों को तान उन उपेक्षेता उपेक्षा करे, प्रमाणित न माने, अनुकंपया अथवा दया द्वारा उन्हें असली जीवन की शिक्षा दे। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य श्रीमद् प्रभुपाद जी के द्वारा। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति के लिए विधि विधानों का परित्याग करना, गुरु के संरक्षण में रहते हुए ब्रह्मचारी के लिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करना, वानप्रस्थ के लिए गांव में रहना और तथा कथित सामाजिक कार्यों में लगे रहना, अथवा संन्यासी के लिए इंद्रिय तृप्ति में अनुरक्त रहना निंदनीय है। जो ऐसा करता है वह अत्यंत निम्न श्रेणी का माना जाता है। ऐसा दिखावटी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहग्रस्त रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद से निकाल दे, या हो सके तो उस पर दया करके उसे शिक्षा दे, जिससे वह अपने मूल पद पर वापस चला जाए। तात्पर्य, हमने बारंबार जोर देकर यह बात कही है कि मानव संस्कृति तब तक प्रारंभ नहीं होगी जब तक मनुष्य वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों को ग्रहण नहीं करता। यद्यपि गृहस्थ जीवन में विषय भोग के लिए छूट है, किंतु कोई भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन के विधि विधानों का पालन किए बिना जौन सुख नहीं उठा सकता। इसी तरह ब्रह्मचारी को गुरु के संरक्षण में रहना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरु कुले वसंत दांतो गुरु हितम। यदि ब्रह्मचारी अपने गुरु के संरक्षण में नहीं रहता है, यदि वानप्रस्थी समान कार्यों में लगा रहता है, या सन्यासी लालची होता है और जीव के स्वाद के लिए मांस अंडा व्यर्थ के सभी वस्तुओं को खाता है, वह वंचक है, ठग है, और तुरंत ही उसे महत्वहीन समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों पर अनुकंपा की जानी चाहिए, और यदि किसी में पर्याप्त बल हो तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन के गलत मार्ग पर चलने से रोकना चाहिए, अन्यथा उनका बहिष्कार करके और उन पर कोई ध्यान ही नहीं देना चाहिए। सही प्रभुपाद की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान के कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं, और विशेष रूप से आभार कि हमको एक पुनीत कार्य में नियुक्त किया है। यह सप्तम स्कंध का अंतिम अध्याय है, 15वां अध्याय, और लगभग इस प्रसंग का समाहार कर रहे हैं, अंतिम में उपसंहार। तो भागवत पढ़ने वालों को यह पता होनी चाहिए कि यह 7वां स्कंध देवर्षि नारद जी के द्वारा बोला गया है। इसके वक्ता नारद जी हैं। नारद जी की कथा को सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में प्रस्तुत कर रहे हैं, और उसी प्रसंग को नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमद्भागवतम में विभिन्न वक्ता हैं, ठीक से क्रम नहीं समझने के कारण समझ में बात नहीं आती कि कभी श्रुत उवाच, कभी श्रुत उवाच, कभी नारद उवाच कैसे आ जाता है। तो हम लोगों को जो भागवत प्राप्त हुआ है वह नैमिषारण्य की रिकॉर्डिंग है, व्यास देव के दिमाग में उसको उपस्तुत किए हैं। नैमिषारण्य के वक्ता हैं सूत गोस्वामी, उग्र शर्वा रोमहर्षण के पुत्र सूत गोस्वामी, और उन्होंने सीधे गंगा के तट पर सुखदेव गोस्वामी के किए गए प्रवचन को प्रस्तुत कर दिए हैं। सुखदेव गोस्वामी भिन्न भिन्न प्रश्नों के उत्तर में अलग अलग वक्ताओं को प्रेजेंट किए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ 7वां स्कंध के वक्ता देवर्षि नारद हैं। प्रसंग ऐसा है कि राजसूय सभा में जब भगवान की अग्नि पूजा की व्यवस्था महाराज निश्चित किए तो उनका विरोध शिष्यपाल किया, बहुत भयंकर विरोध किया। महाभारत में कथा है, भगवान उसके अनेक गलतियों को क्षमा करते रहे और लास्ट में अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिए। यज्ञ का शुरुआत ही शिष्यपाल की हत्या से हुई। तो शिष्यपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली जो आकाश मंडल में घूमकर फिर कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। तो उस सभा में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सारे ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षि शिव ब्रह्मा आदि सभी उपस्थित थे। तो सब लोग इस बात को समझ रहे थे, कुछ लोग तो समझ रहे थे, महाराज युधिष्ठिर जो नहीं समझ रहे थे उनके तरफ से प्रश्न करते हैं कि महान कौतूहल है, आश्चर्य है कि जीवन भर भगवत विमुख रहने वाला, भगवान की निंदा करने वाला यह शिष्यपाल, महाराज युधिष्ठिर के लिए अनजान नहीं था, खास मौसी का लड़का था, कुंती महारानी के महान राजा दे देवी के पुत्र था। तो महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि यह भगवत विरोधी है। जब से तोतली बोली में बोलना प्रारंभ किया तभी से कृष्ण को गाली दे रहा है, आज नहीं कि आज इस सभा में गाली दी है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण के चरणों को प्राप्त करे यह महत्व आश्चर्य है। तो सभी ब्रह्मर्षियों ने देवर्षि नारद को संकेत किया कि आप इनका उत्तर दीजिए। तो उन्हीं के उत्तर के क्रम में देवर्षि नारद के वचन कर रहे हैं और कहते हैं कि महाराज यह स्पेशल केस है। ऐसे तो जिसकी मति किसी भी प्रकार भगवान में लग जाए वह भगवान को प्राप्त करता है। इसके अनेक विधा हैं, चाहे प्रेम से, चाहे ईर्ष्या से, द्वेष से, जैसे भी जेन के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश है। यह है साक्षात भगवत पार्षद जय और विजय। संकादि के श्राप से 3 जीवन तक असुर योनि प्राप्त किया, अब इसका कोटा पूरा हो गया, अब वैकुंठ को चला गया। तो प्रथम बार जब यह हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में आया था तो यह हिरण्यकश्यप के रूप में इसका पुत्र प्रहलाद भगवान का भक्त निकला, जिसका इन्होंने विरोध किया। और दूसरे बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए और तीसरा बार शिष्यपाल और दंत भक्त के रूप में आए हैं और अब वैकुंठ धाम में जाएंगे, चले गए। तो कथा तो प्रश्न का उत्तर तो हो ही गया, लेकिन महाराज जिज्ञासा कर दिए कि कोई भी पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, हिरण्यकश्यप के विरोध करने लगा। तो देवर्षि नारद को अवसर मिला अपने शिष्य की कथा कहने का, 10 अध्याय में प्रहलाद चरित का है। हमारे आचार्य चक्रवर्ती ठाकुर आदि टीकाकारों ने कहा है कि सप्तम स्कंध में ऊटी का वर्णन है, भागवत का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊटी। 10 विषयों पर भागवत में चर्चा है, जैसे भगवद गीता में 5 विषयों की चर्चा है, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म और जीव। तो भगवान ईश्वर तत्व का वर्णन है, जीव तत्व का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है, काल और कर्म का वर्णन है। वैसे ही भागवत में 10 विषय का वर्णन है, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। तो ये सभी परिभाषिक शब्द है। सर्ग का अर्थ है सृष्टि, जो भगवत सृष्टि है, भगवान सृष्टि करते हैं, यहीं से भागवत प्रारंभ होता है। जगत कैसे बना है, इसमें क्या मटेरियल लगा है, कौन कौन इंजीनियर लगे हैं, ये सब वर्णन है। और जब सृष्टि के विस्तार की कथा, सृष्टि को 2 भाग में कर दिए, सर्ग और विसर्ग। सर्ग मतलब भगवत सृष्टि जो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया गया, और विसर्ग माने ब्रह्मा से लेकर अब तक जो सृष्टि का विस्तार है, पेड़ बनाने से फर्नीचर बनाने तक सब। तो ये सब विसर्ग है, इसका वर्णन है। तो दूसरे और तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय तक सर्ग विसर्ग का वर्णन है। पांचवें स्कंद में स्थान का वर्णन है, सर्ग विसर्ग स्थान। स्थान का मतलब इस प्राकृत जगत के भौगोलिक स्थिति, कौन कहाँ क्या है, किधर नदी है, पहाड़ है, द्वीप है, समुद्र है। और चौथा विषय है पोषण, एक प्राकृत जगत में जीवों का पोषण कैसे होता है। तो पोषण के भी 2 प्रकार है, एक जनरल पोषण, सबके नाकों तक ऑक्सीजन का सप्लाई, चाहे वह भक्त हो अभक्त हो, भगवान की पूजा करे या गाली दे, जनरल पोषण। सबके लिए पानी की व्यवस्था, सबके लिए प्रकाश की व्यवस्था, सबके लिए हवा की व्यवस्था और एक स्पेशल पोषण जो अपने भक्तों पर विशेष स्नेह से भगवान करते हैं, इसका वर्णन छठवें स्कंद में है। छठवां स्कंद में अजामिल, इंद्र आदि भक्तों का पोषण की कथा है। किस तरह से पाप में रक्त, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच में रक्त भक्तों का भी पक्ष भगवान लेते हैं और कैसे उसका पालन करते हैं और अपने धाम में सुरक्षा देते हैं, इसका वर्णन है। सातवें स्कंद में ऊती का वर्णन है, पांचवा विषय ऊती। ऊती का अर्थ है कर्म वासना, यह समझना जरूरी है। उतय कर्म वासना, कर्म वासना का अर्थ है जीव के अंदर विविध प्रकार की डिजायर है, चाह है, भोग की इच्छा है, तरह तरह की कामना है मन में। तो इनको तीन भाग में बांटा गया है ऊती को, एक सद वासना, दूसरा असद वासना और तीसरा मिक्स वासना, मिश्र वासना का। तो सद वासना का अर्थ है जो सत स्वरूप भगवान के प्रति आसक्त है, वो भगवान को चाहता है, भगवान के विषय में बोलता है, सोचता है, उनके साथ रहना पसंद करता है, वो नित्य स्वरूप में स्थित रहना चाहता है, उसको सद वासना कहते हैं सद। और इसके ठीक विपरीत है असद, भगवान नहीं चाहिए, यही टेम्पररी चीज ही चाहिए जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, प्राकृत विषयों के फेरे में जो है उसको असद वासना कहते हैं। ये दो वेराइटीज हुआ, सद वासना विशिष्ट और असद वासना, और तीसरा है दोनों चाहिए, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, मिक्स। तो तीनों के लिए पांच पांच अध्याय जगह है सातवें स्कंद में, 15 अध्याय में सातवां स्कंद पूरा होता है। प्रारंभ में असद वासना का नेतृत्व करते हुए हिरण्यकश्यपु के व्यक्तित्व का वर्णन है, भगवान को रिजेक्ट करके वो संसार भोगना चाहता है, अमरता का वरदान ब्रह्मा से प्राप्त करके वह चाहता है कि संसार के जितने भी भोग हैं मुझे प्राप्त हो, इसका वर्णन है। और पांच अध्याय में 6 से 10 तक प्रहलाद महाराज के सद वासना का वर्णन है। यद्यपि प्रहलाद महाराज की कथा पहले ही प्रारंभ हो गई है, लेकिन सद वासना का क्या उत्कृष्ट स्वरूप है, 6वें 7वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की शिक्षा, 8वें अध्याय में भगवान के प्राकट के बाद देवताओं को भगवान के प्रति अपना विचार, 9वें अध्याय में प्रहलाद महाराज की दिव्य स्तुति नृसिंहदेव के चरणों में, 10वां अध्याय में भगवान और प्रहलाद के बीच, नृसिंहदेव और प्रहलाद के बीच सुंदर वार्तालाप और प्रहलाद को अभिषेक। इस प्रकार एक पांच अध्याय अद्भुत सद्वासनाओं का वर्णन करता है समग्र भागवतम में, ये अपने आप में अद्भुत है। इसके बाद जब कथा सुनने बैठ ही गए हैं महाराज युधिष्ठिर और वक्ता देवर्षि नारद जी जैसा है, तो अब मिक्स वासनाओं के विषय में पूछते हैं। वो है वर्णाश्रम, जिसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं। नैमित्तिक धर्म एक नित्य धर्म है, सद्वासना जो स्वरूप धर्म है, जैव धर्म है, सनातन धर्म है, भागवत धर्म है, भगवत धर्म है, कई शब्दों से इसको कहा गया है, जो जीव का धर्म है, असली धर्म। और इसके साथ साथ शरीर मिलते ही एक कर्तव्य हो जाता है, धर्म का अर्थ है कर्तव्य, जिसको नैमित्तिक कहते हैं, किसी निमित्त से। जैसे छोटे छोटे बच्चों को स्कूल का टास्क पूरा करना पड़ता है, समय पर स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, नहीं चाहते हैं फिर भी करना पड़ता है, मजबूरी है। तो जो मजबूरी में धर्म पालन किया जाता है उसको निमित्त धर्म कहते हैं, हेतु धर्म, कारण से, नैमित्तिक इसको कहते हैं। इसी प्रकार का धर्म है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और इसी प्रकार का धर्म है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
कि एकदम करना ही पड़ता है। जैसे शरीर मिल गया तो भोजन बनाना और खाना ये नैमित्तिक धर्म है, मजबूरी है, नहीं खाएंगे तो शरीर नहीं चलेगा, इसलिए इसे भी करना ही पड़ता है। तो इस नैमित्तिक धर्म का वर्णन महाराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। इसी क्रम में ब्रह्मचारी का धर्म, गृहस्थ का, वानप्रस्थी का, सन्यासी का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि का वर्णन कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से 14वें अध्याय में, 10वें अध्याय में गृहस्थ धर्म के सदाचार का वर्णन करते हैं। अभी 14 अध्याय में गृहस्थ धर्म का वर्णन किए और इस 15वां अध्याय में महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए सभी धर्मों के मूल लक्ष्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे अपने धर्मों का पालन करते हुए नित्य धर्म की ओर जाना चाहिए। शरीर पोषण ही जीवन का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य है शरीर ठीक से रहे, इसके साथ भगवान को प्राप्त करें। तो यहां इस श्लोक में कह रहे हैं गृहस्थस्य क्रिया त्यागो व्रत त्यागो बटोरपि तपस्विनो ग्राम सेवा भिक्षो इंद्रिय लोलता आश्रम अपदा हेते खलवाश्रम विडम्बना देव माया विगूढ़ स्थान उपेक्षेतानुकंपया। अरे गृहस्थों को गृहस्थी में रहते हुए विधि विधान का पालन करना चाहिए, ऐसा नहीं कि विवाह कर लिया और सन्यासी जैसा घूमना प्रारंभ कर दिया, ये नियम नहीं है। यही करना था तो सीधे ब्रह्मचारी से संन्यास में आ जाना चाहिए। ये भी विधि है कि अगर कोई ब्रह्मचारी चाहे तो बीच के दो आश्रमों को लांग कर ओवरटेक कर सकता है, संन्यास में जा सकता है, और यदि वो नहीं जाना चाहता है तो ठीक से आवे, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी से आवे अथवा लिफ्ट से आवे, दो ही साधन है। तो सीढ़ी से क्रमशः आता है और लिफ्ट से जिस पर जाना है वहां का बटन दबाता है सीधे संन्यास में। तो यदि स्टेप बाय स्टेप आ रहा है, गृहस्थी स्वीकार किया तो गृहस्थ बनकर सन्यासी जैसा घूमना, घर का काम धंधा ठीक से नहीं करना, स्त्री बच्चों को नहीं संभालना, ये समाज के दृष्टि से गलत है ना। स्त्री का भी कंप्लेन आएगा, समाज का भी। यही करना था तो विवाह क्यों किया, ऐसा क्यों किया, इसको ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। तो यह ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अथवा विधि विधान का अर्थ यह है कि वह ठीक से जो गृहस्थ का विधि है, धर्म है, उसका पालन करे। ऐसा नहीं कि गृहस्थी मिल गया, स्त्री प्राप्त कर लिए तो अब आपको छूट हो गया, जो मन करे वो करे, ऐसा लाइसेंस नहीं है। अवैध स्त्री संघ का अर्थ है जो शास्त्र विधि है उसका उल्लंघन करना, चाहे वो ब्रह्मचारी करता है, चाहे वानप्रस्थी या गृहस्थ या सन्यासी करता है, सबके लिए। तो बल्कि गृहस्थ के लिए इतना नियम कानून है शास्त्र में कि जिसको विवाह के पहले अगर कोई वास्तव में समझ जाए तो विवाह ही स्वीकार नहीं करेगा। इतना भारी रिस्क लेगा कौन। 14वां अध्याय, सप्तम स्कंद के 14वां अध्याय को एक एक श्लोक पढ़िए। हम तो गृहस्थों को कहते हैं कि महीना में दो बार जरूर पढ़ना चाहिए एकादशी को। एकादशी को जो भाग वैष्णव होकर भागवत नहीं पढ़ता हुआ वैष्णव में अधम है, पतित है, एकादशी महात्म्य कहा गया है सभी व्यक्ति के लिए। जो एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनको भागवत पढ़ना नितांत आवश्यक है या सुनना। तो अगर वह नहीं पढ़ा नहीं सुना तो वैष्णव में अधम है, पतित वैष्णव माना जाता है। वैष्णव है लेकिन निम्न कोटि का गिरा हुआ। तो पतित वैष्णव नहीं बनना है, भागवत पढ़ना ही है, सुनना ही है। तो जब सुनना पढ़ना है तो इस अध्याय को भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए एक बार। महीना में दो बार, तो इसको पढ़ने से अपने स्थिति का पता चल जाएगा कि हम वास्तव में ठीक स्तर पर है कि नहीं। तो इसमें सदाचार का वर्णन करते हुए आप लोग क्रमशः कथा सुनते आए हैं, तो ये 14वां तो अभी बीता है, सुने ही होंगे किस तरह से देवर्षि नारद वर्णन करते हैं। एक गृहस्थी में रहकर कोई ठीक से नियमों का पालन करे तो साधारण सन्यासी नहीं, वो महामुनि की गति प्राप्त करता है। महाराज दृष्टि का प्रश्न है कि हम लोग घर गृहस्थी में आसक्त गृहमूढ़ व्यक्ति कैसे इन जतियों की गति को प्राप्त कर सकते हैं, लोभ प्रदर्शित करते हैं और अपने स्थिति में स्थिति का वर्णन करते हैं। गृहस्थ एतम पदवी विधिना जेन चांजसा याया देव ऋषे ब्रूही मात ऋषो गृहमूढ़ थी। महाराज युधिष्ठिर का प्रश्न है, श्री युधिष्ठिर उवाच, गृहस्थ एतम पदवी विधिना जेन चांजसा याया देव ऋषे ब्रूही मात ऋषो गृहमूढ़ थी। इसका अर्थ है कि हे देवर से, हे ऋषिवर, आप कृपा करके बताइए कि घर गृहस्थी में रहने वाला व्यक्ति किस विधि से आसानी से, ज्यादा कठिनाई न हो, हमारे जैसे गृह बुद्धि घर गृहस्थी में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, वे व्यक्ति किस प्रकार से ऋषियों की गति प्राप्त कर सकते हैं, इस जीवन से मुक्त हो सकते हैं। घर गृहस्थी में रहते रहते आसानी से सरलता से वह कैसे इसे पार हो सकता है, किस तरह से मुक्त हो सकता है, ये तो मुक्ति का कोई चांस ही नहीं है, बहुत जबरदस्त त्रिकोण है, कैसे निकल सकता है। तो नारद जी जो प्रारंभ करते हैं, गृहे वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचितम, हे राजन, घर गृहस्थी में रहते हुए घर गृहस्थी के क्रिया को यथोचित पूरा करे, ठीक से पालन करे, लेकिन अपने को मालिक मन कर नहीं कि हम घर के गार्जियन हैं, हम इतना बिजनेस कर रहे हैं, काम धंधा दुकान मकान बनाए हैं, ऐसा नहीं। उस सारे क्रियाओं को, सारे कर्मों को वासुदेवार्पणम साक्षात उपासित महामुनि, वह भगवान वासुदेव को समर्पित करके चले तो वास्तव में वह महान मुनियों की गति को प्राप्त करता है। जो बड़े बड़े सन्यासी सब त्याग कर करते हैं, घर गृहस्थी में वो कर्म करते हुए भी वो महामुनि है, लेकिन वासुदेव को अर्पण करना पड़ेगा। मालिक बनने से फंस जाता है, सेवक बनने से वो पार हो जाएगा। जैसे दुकान में नौकर आते हैं, समय से दुकान खोलते, दिन भर काम करते रहते हैं और मालिक देखता है कितना पैसा आया, रिसीट बनाता है, देता है, कितना घाटा लगा, कितना लाभ हुआ, यह टेंशन मालिक के जिम्मे है, नौकर का नहीं, उसको जो वेतन मिला गया। यदि वह मालिक का काम करना प्रारंभ कर दे, उसके मन में आ जाए कि हम स्वामी हैं, हम इसके मालिक हैं, तो गलती में है। तो हम लोग बनारस सब्जी मार्केट में देखे हैं, वहां सार घूमते रहते हैं और सब्जी साग रखा है वहां मुंह लगाते हैं, सभी दुकानदार छोटा छोटा डंडा लेकर बैठे रहते हैं, जो भी मुंह लगाता है खाने के लिए त्यों पीटते हैं, कभी इस दुकान पर पीटा जाता है, कभी उस दुकान, क्यों? वह अपने को भोक्ता मान लेता है कि हमारे लिए खाने के लिए है, इसलिए पीटा जाता है। जब ही प्रकृति को भोगने की मानसिकता होती है, प्रकृति पीटना प्रारंभ कर देती है, कभी कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरके डुबाए, दंड जन राजा जन नदी पिछवाए। तो ये स्वरूपतः कृष्ण का दास जीव जब कृष्ण को भूलकर उनके स्वामित्व का दखल करना चाहता है, तब माया पकड़ लेती है। निकटस्थ माया तारे झापटी अधरे, वही मुख जीव जब भोग करना चाहता है भगवान को भूल कर, और भूल जाता है कि सारे जगत के स्वामी भगवान है, भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, इस बात को भूलता है तब वह पीटा जाता है। तो इस तरह से वासुदेव को अर्पण करें और फिर क्या करें, आगे सब वर्णन पीछे हो चुका है। श्रीणवन भगवतो विष्णुम अवतार कथा स्मृतम सद धानो यथा कालम उपशांत जनावृति, ऐसा वर्णन करते हैं कि मानो सन्यासियों के कर्तव्य का वर्णन करें। उस सर्वदा भागवत सुनता रहे और काम धंधा क्या करे उसको आगे कहेंगे। श्रद्धा के साथ कभी भागवत सुनने की व्यवस्था अपने घर पर करें या विरक्तों के आश्रम में जाए, और घर गृहस्थी का संबंध वैसे समझे जैसे स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न देखता है, उसमें आसक्त होता है और उसके दुख से सुख से प्रभावित हो जाता है, लेकिन स्वप्न टूटने के बाद जैसे पता चलता है कि अरे तो झूठा था, वैसे गृहस्थों को भी ये रिलेटिव सगे संबंधी पत्नी भाई पुत्र बेटा ये सबको स्वप्नोत समझे। तो मतलब इन्विटेशन स्वीकार न करे, एक दूसरे के पास न जाए, कहते यावत दत्त उपास इनो देहे गेहे च पंडिते विरक्तो रक्तवत तत्तम निलोके नर्तम नसेत, करे लेकिन भीतर से विरक्त रहे। ज्ञातया पितरों पुत्रा भ्रातरा सुहृदो परे, जो अपने ज्ञाति है गोतिया परिवार, पितरों माता पिता, ताऊ चाचा दादा, पुत्रा बेटा बेटी, भ्रातरा भाई बहन, सुहृदो और भी रिलेटिव, यद बदंती यदिच्छंती, जो कहते हैं जो चाहते हैं चानुमोदित, हाँ ठीक है अनुमोदन करे निर्मम, लेकिन ममता न रखे। हमारे बेटे का कल बर्थडे है, आई एकदम आएंगे ना, निश्चित आएंगे, लेकिन भीतर से मन बना ले बिल्कुल टाइम बर्बाद करने नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, और टाइम पर ठीक उसी समय फोन कर दे, इस समय तो बहुत सुविधा है। प्रभु जी सौरी में फंस गया, हरे कृष्णा, मैं किसी जगह मेरे यहाँ साधु आ गए, साधु वैष्णव को तो बहुत अच्छा बहाना है, हमारे यहाँ कोई भक्त आ गए या स्पेशल हम जब करने जब मैं गिरिराज जी चला गया या सत्संग में चला गया या प्रीचिंग के लिए चला गया, तो उसे बेटर काम में चला गया। अब वहाँ बर्थडे मनाना जरूरी है, मूर्खतापूर्ण योजना है। अगर हम किसी कोई कैदी को जेल में बंद कर दिया जाए और उसका सजा आजीवन कारावास हो या 20 साल कारावास हो, और वह प्रतिदिन वर्षगांठ मनाने लगे कि इस डेट को मैं यहाँ आया, इस डेट को आया, 1 साल पूरा हुआ, 2 साल पूरा हुआ, उसी प्रकार की मूर्खता है ना बर्थडे मनाना। उसको यहाँ आना सजा है ना, वो तो निश्चित रूप से इस प्राकृत जगत में कोई सुख नहीं है, भगवत विमुख व्यक्ति यहाँ भेजे जाते हैं। तो ऐसे कामों में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, इस तरह के अनेक काम है जो समय बर्बाद करता है, तो उनको कह देना चाहिए कि हाँ ठीक है, लेकिन निर्मम होना चाहिए। तो इन सब बातों को बताते हुए यहाँ जिस प्रसंग को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें गृहस्थ के क्रिया को करे, जो उचित कर्म है उसको करे जितना जरूरी है, फालतू नहीं। और कभी ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि घर गृहस्थी स्वीकार किए घर का काम, बच्चों का पालन, स्त्री का पालन एक आवश्यक कर्तव्य है, उसको छोड़ करके और वो विरक्त की तरह घूमना प्रारंभ कर दे, ठीक से अपना काम न करे। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि वर्णाश्रम के सिद्धांतों को ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ जीवन के लिए छूट मिला है, ठीक है कि स्त्री स्वीकार करो, सफेद कपड़ा पहन लिए, अब उनको लाइसेंस मिल गया किसी भी स्त्री से बात करेंगे, यह उचित नहीं, यह विधि नहीं है, यह विधि नहीं है ना। लाल पहना है तो उसको सामाजिक बंधन है कि वह स्त्री से बात करेगा तो दूसरे लोग कहीं देखो सन्यासी होकर ब्रह्मचारी होकर ऐसा कर रहा है और गृहस्थ बन गया तो उसे छूट हो गया, नहीं, उसको विधि विधानों का पालन करना चाहिए। अगर इन विधि विधानों की चर्चा कोई ब्रह्मचारी और सन्यासी करता है तो इतना ओपन बोलना है। कल महाराज थोड़ा सा बोल दिए तो चर्चा होने लगा कि सन्यासी लोग ऐसे ओपन बोलते हैं। महाराज कह दिए कि जो ऋतु काल में संतान प्राप्त करने के लिए महीना में एक बार अपने स्त्री के साथ संग करता है वो भी संतान प्राप्ति के लिए, इसके अतिरिक्त जो वासनाओं में भर कर इन विधि का पालन नहीं करता वो महीना में दो बार या तीन बार चार बार सप्ताह में या दो दिन तो वह अपने लिए कफन तैयार कर ले, उसको निश्चित रूप से जल्दी मरना है। तो ऐसे लंपटों के लिए शास्त्र में कोई छूट नहीं है, एक गृहस्थों के लिए एक स्ट्रिक्ट नियम है। ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन केवल ब्रह्मचारी को नहीं सबको करना चाहिए। और जहां तक वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था है उसमें 75% स्त्री से अलग रहने की व्यवस्था है ना, सुने हैं? 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 वर्ष तक, अगर 100 वर्ष का लाइफ है तब 50 वर्ष तक गृहस्थ और इसके बाद वानप्रस्थ और बाद में संन्यास। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी तीनों को स्त्री से दूर रहना है। तो 75% अलग रहना है, केवल 25% स्त्री के साथ रहना है। तो यह व्यवस्था इसलिए है, एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से बतलाते हैं इन विषयों पर, भगवान स्वयं प्रवचन किए हैं उद्धव जी से। तो कहते हैं उद्धव इसलिए कि लोग ठीक से अपने इंद्रियों को संयमित नहीं कर पाते हैं। महाराज से एक उदाहरण देते हैं, जैसे किसी बड़ी नदी में डैम बना दिया जाता है पानी रोकने के लिए, उसका लक्ष्य है पानी रोकना, लेकिन बरसात में ज्यादा बारिश हो जाए तो डैम टूटने का भी भय रहता है ना, वो टूट सकता है ज्यादा पानी आ जाए तो। उसके लिए ऊंचे जगह पर पानी, ओवर पानी को निकलने की व्यवस्था भी दी जाती है। वो व्यवस्था इसलिए है कि पानी इसमें भरा रहे, अगर ऐसी व्यवस्था न की जाए तो टूट सकता है। उसी प्रकार जीवन का लक्ष्य है अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में बीज को अपने शरीर में अधिक से अधिक संग्रह करना, इसे स्मृति ओझ बल सब कुछ बना रहता है, ठीक से भजन होता है। अगर ऐसा संभव नहीं है, ज्यादा कामुकता का पार है, तोड़ सकता है, किसी भी सती साध्वी के प्रति भी वह आकृष्ट हो सकता है, बलात्कार कर सकता है, तो उसके लिए गृहस्थी की व्यवस्था की गई। भगवान बड़ा कठोर प्रवचन उद्धव से करता है। उद्धव एक स्त्री की व्यवस्था, गृहस्थ की व्यवस्था केवल इंद्रिय तृप्ति को, अत्यधिक लंपटता को रोकने की एक व्यवस्था है, बस और कुछ नहीं। और इस संतति और सृष्टि बढ़ाने के लिए है, इस संसार सृष्टि चलती रहे इसके लिए है। उसी प्रकार स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, केवल पुरुषों को ही नहीं, अपने एक पति से केवल संतान प्राप्ति के लिए पुरुष का संग चाहिए। तो यह जीवन, इसको कहते हैं विधि। इन विधि विधानों का जो त्याग करता है माने तोड़ देता है, क्रिया त्यागो, इन विधियों को त्याग करता है उचित नहीं, वह निंदनीय है, वह समाज के द्वारा बहिष्कृत है, थोड़ा दया पूर्वक उसको समझाना चाहिए। व्रत त्यागो बटोरति, और जो ब्रह्मचारी व्रत का त्याग करता है, ब्रह्मचर्य का त्याग या गुरुकुल में निवास करते हुए अथवा गुरु के निर्देशन में मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती, जप, भागवत पाठ, श्रवण आदि, वह अधम है, वह ब्रह्मचारी पतित है, वह बहिष्कृत करने लायक है। अथवा अपने ब्रह्मचर्य व्रत के से हटकर किसी स्त्री से संपर्क करता है, या आजकल की स्थिति है फोन पर बात करता रहता है, इस समय ब्रह्मचारियों के पतन का सबसे बड़ा साधन है फोन और प्रीचिंग का अहंकार कि हम बहुत बड़े प्रीचर हैं, प्रीचर का अहंकार बहुत बड़ा धोखा देता है। जिसको भी प्रीचिंग करना है सामने करना चाहिए, फोन पर नहीं। कभी कभी बड़ी जिज्ञासु होती है, यो प्याति शनैर माया ज्योषी देव विनिर्मिता। बड़े ही सेवा और समर्पण की भावना से स्त्री आती है, भगवान कपिल देव कहते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा माया का स्पेशल एजेंट है। कैसे गिराने के लिए आती है, प्रभु जी मुझे एक जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? आप बहुत सुंदर प्रवचन किए, मुझको एक प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न सबके सामने करो ना, फोन पर करने की क्या जरूरत है। और प्रभु जी अपने को वक्ता के अहंकार में उत्तर भी देने लगे, धीरे 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 वो प्रश्न दूसरे तरफ चला जाएगा, उसके शब्दों में उसके बातों में रुचि होने लगेगी। यह निश्चित रूप से विनाश है, पतन है। व्रत त्याग वो कटोरती, अपने नियम का स्ट्रिक्ट पालन करना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को प्रवचन नहीं करना चाहिए, जैसे ही समय किया जा सकता है। अथवा कभी गृहस्थ के घर गए तो साथ में कोई रहना चाहिए, ब्रह्मचारी साथी। अकेला में एकांत में बात नहीं करना चाहिए, फोन पर तो बिल्कुल नहीं। और एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, मैं बात नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपशब्द बोलिए, कुछ ठीक है आप प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन फोन पर नहीं। और तपस्विनो ग्राम सेवा, जो वानप्रस्थी है, घर गृहस्थी में रह चुका है, समाज का चौधरी बन गया है, इसके बाद वानप्रस्थ लिया, पंचायत करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो अब तपस्वी वानप्रस्थी के बाद भी केस आ ही जाते हैं कि अरे आप घर परिवार समाज त्याग दिए, हमारी एक प्रॉब्लम है, तो चलो ठीक है आ जाता हूं पंचायत करने। तो वो ग्राम सेवा या सामाजिक सेवा में तो वानप्रस्थी लगता है, यह उसका पतन है। वह अब छोड़ दिया। दुख की बात है, सरकार काम लायक नहीं समझती, रिटायर कर देती है। ऐसे लोग भी आकर उससे भी ज्यादा काम स्वीकार कर लेते हैं, दूसरा काम करने लगेंगे, दूसरी नौकरी। सरकार के दृष्टि में वो काम लायक नहीं है, लेकिन समाज के दृष्टि में अभी बहुत बड़ा काम लायक है। ऐसे लोगों को वास्तव में पीटना चाहिए जो भजन है। रिटायर लोग अगर दुकान काम धंधा संभालते हैं, वास्तव में उनको पीटना चाहिए। कबीर दास कहते थे कि ऐसे लोगों के लिए बाणी का उपदेश नहीं, मुंगरा से उपदेश करना चाहिए। कहे कबीर दो मुंगरी मंगाओ, भोजपुरी में उपनारस बोलते थे, जो जैसे माने उसको वैसे मनाओ, उसको पीटो, ऐसे थोड़े सुनेगा। जैसे लंका में जब हनुमान जी गए जा रहे थे, तो गेट पर सिक्योरिटी गार्ड में लंकिनी थी, तो कहीं नहीं जा सकते हो, जो लंका में प्रवेश करता है चोर बिना मेरे परमिशन के, वह चोर है, उसको मैं हार करती हूँ। ये अच्छा खा जाती हो? हनुमान जी पूछे, कहे हाँ। खींच कर एक तमाचा लगाए और कहे कि दूसरे के स्त्री को लेकर जाने वाला चोर तुमको नहीं दिखाई दिया? तुम जब इसके लिए हो कि कोई एक गलत व्यक्ति ना घुसे, तो ऐसा चोर तुमको नहीं दिखाया, मैं दिखाई दिया हूं। जब एक तमाचा लगा तो जानते हैं क्या लंकिनी कहती है, जमीन पर गिर पड़ी, एकदम मुंह में धूल आ गया। तब कहती है, ताप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाई का अंग, तुले न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। करें कि हे ताप, इस दुनिया के जो भी सुख है, स्वर्गाधिक सत्य लोग की सारी संपदा एक पलड़े पर रख दिया जाए तराजू के, और एक पलड़े पर आप जैसे साधु का संग प्राप्त हो, तो यह भारी पड़ेगा। एक तमाचा में सत्संग बात पता चला। उपदेश नहीं, हनुमान जी के तमाचा ही सत्संग का काम किया। और कहने लगी, आज मैं समझ गई कि अब लंका का विनाश निश्चित है। उसको ऐसा वरदान मिला था कि कोई व्यक्ति तुमको जब एक तमाचा में धरती पर गिरा देगा, समझ जाओ कि रावण का विनाश निश्चित है। तो कही कि निश्चित रूप से आप जाइए, अब मैं समझ गई कि अब आगे क्या होने वाला है, तो मुझे कुछ उपदेश कीजिए क्या करना है। तो कहे कि हाँ आप भजन करो। तो इस तरह से कभी कभी तमाचा की भी जरूरत पड़ता है। लोग इतना खल है, इतना लंपट है, इतने दुष्ट है कि भजन न करके दूसरे कामों में लग जाते हैं, फालतू काम में। जिस स्तर में है उसी स्तर में रहना चाहिए। जब आप रिटायर हैं, घर की गृहस्थी छोड़ चुके, तो फिर पंचायत करने की क्या जरूरत है। भिक्षुर इंद्रिय लोलता, भिक्षु को संतुष्ट होना चाहिए, उसको स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीका है ये ठीक नहीं है ऐसा क्या। जब तू घर छोड़ दिया, किचन छोड़ दिया, तो मोटी रोटी नमक के साथ खाना ही पड़ेगा मधुकरी का, इसका तो प्रिपेयर होना चाहिए ना। ओहो, घर में कितना गरम गरम रोटी मिलता था, और यहाँ मोटी बासी रोटी भी मिल सकती है, गाली भी मिल सकता है। घर परिवार छोड़कर, काम धंधा छोड़कर, काम छोड़ घूम रहे, भीख मांग रहे, तुमको शर्म नहीं लग रही है। तो भिक्षुक है तो भीषण इंद्रिय लोल उठता लोलता, भिक्षुक को इंद्रिय के फेर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा रहने को नहीं लूं, इतना गर्मी हो रहा है, एसी नहीं है। अगर कोई सन्यासी एसी की बात करता है तो मारना चाहिए, खींच कर करना चाहिए। वास्तव में किसी तरह कोई जरूरत नहीं। कोई भी सन्यासी भौतिक इंद्रियों की मांग करता है, स्वतः व्यवस्था पक्ष जो भी करे वो ठीक है, लेकिन स्वयं नहीं। अभी क्या नाम है, दत्तात्रेय जी प्रवचन किए हैं पीछे, प्रहलाद महाराज पूछते हैं, आप इतना प्रसन्न हैं धरती पर बैठे हुए, आपको तो देख कर लगता है आप निरुद्यमी है, कोई उद्यम नहीं करते। प्रायः जो उद्यम करते हैं उनके पास पैसा आता है, जिसके पास पैसा आता है वो ठीक से भोग करता है, जो ठीक से खाता पीता है वो मोटा होता है। लेकिन आपको देखने में लगता है कि आप कुछ नहीं करते फिर भी स्वस्थ है, आपके चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है। तब दत्तात्रेय जी कहते हैं, प्रहलाद मैं सबसे बात नहीं करता, लेकिन तुम भगवान के बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अपना परिचय बतलाते हैं और कहते हैं कि दुनिया के लोग क्या व्यवहार करते हैं इसको माइंड नहीं करता, क्योंकि सभी लोग अपने स्वभाव बस व्यवहार करते हैं। कभी कोई मुझको हाथी पर बैठा कर घुमाने लगता है, दिन में 3 बार खिला देता है, कभी कभी मखमली बेड पर मुझे सुला देता है, कभी कई दिनों तक उपवास करता हूं, इस कंकड़ पत्थर मिट्टी पर पड़ा रहता हूं, उद्योग कुछ करना नहीं है, जैसा व्यवहार है सबको सहने के लिए तैयार हो, मेरे अनेक गुरु हैं। तो मैं यह नहीं कहता कि कोई सन्यासी एसी में रहे तो गलती है, गलती यह है जब वो चाहे, कोई व्यवस्था दे रहा है वह उस दूसरी बात है, और वह समाज व्यवहार करने के लिए, प्रचार करने के लिए एक से एक सुंदर साधन का प्रयोग कर सकता है। जैसे श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, आप भारतीय सन्यासी होकर यहाँ विदेश में आकर के इतनी सुविधा फैसिलिटी, एयरप्लेन से चल रहे हैं, ये क्या तरीका है। कोई पत्रकार पूछा, ये भारतीय संस्कृति तो नहीं है। कहते हैं आप ठीक कह रहे हैं, भारतीय संस्कृति यह नहीं है कि हम सुविधाओं में रहें, लेकिन हम थोड़ा सा उससे ऊपर चल रहे हैं। दो विचार है त्यागियों का, अगर ध्यान से आप सुने, मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। एक ग्रुप है कि वो सब कुछ त्याग कर वन में चला जाता है, एकांत में भजन करता है, बोलता ही नहीं किसी से, और दूसरा है कि वो थोड़ा सा इससे हटकर सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय धर्म बहतो विमूढ़। दूसरे जीव जो भाया माया से बहिर्मुख होकर दुख सह रहे हैं, ऐसे दुखी जीवों को भगवत भक्ति सुखमय स्थिति बताने के लिए हमको एक विमान का प्रयोग करना पड़ता है। लोग बड़े तेज गति से नरक की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमको फास्ट विमान का आश्रय लेना पड़ता है लोगों को रोकने के लिए, नहीं नरक मत जाओ, इधर बैकुंठ जाने का रास्ता है। तो इसके लिए हम दुखी जीवों को रोकने के लिए, ये तो कम गति से चलने वाला विमान है, हमको तो और फास्ट विमान की आवश्यकता है। कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, कभी इंडिया, चारों तरफ मुझे घूमना पड़ता है। संतुष्ट कर दे उस पत्रकार को समझा कर, हम थोड़ा सा उससे आगे चल रहे हैं, रोकना चाहते हैं, एक विचार है। दुखी जीवों को रोकने के लिए इन सब साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। अपने पास पर्याप्त टाइम है तो ट्रेन से यात्रा की जा सकती है, लेकिन एक दिन में दो जगह प्रवचन करना है तो नहीं की जा सकती है। जन्माष्टमी के दिन दिल्ली और मुंबई दोनों जगह प्रवचन करना है तो फ्लाइट का सहारा लेना पड़ेगा, एक दिन में तो नहीं जा सकते हैं। टाइम है तो ट्रेन से जाएंगे। तो इस तरह वो केवल सुख सुविधा के लिए नहीं, भगवत सेवा के लिए इन साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। या गर्मी शीत जाड़ा अगर सहे और शरीर बीमार हो जाए तो उसे बेहतर है सुविधा पूर्वक रह करके स्वस्थ जीवन रख करके भक्ति का प्रचार किया जाए, भजन किया जाए। तो भिक्षु और इंद्रिय लोलता नहीं होना चाहिए, इंद्रिय के लिए लोभ नहीं होना चाहिए, डगमगाना चाहिए नहीं। ऐसा नहीं कि लोलता, लोलता माने हिलना, जैसे दीपक जलता हवा बहने पर हिलता है, अब बुझा अब बुझा अब बुझा, वैसे नहीं। इंद्रिय के लिए लोलुपता नहीं होनी चाहिए। और इस तरह आश्रम के अपसदा है थे वो अत्यंत गर्हित कर्म है। अपसदा का अर्थ अत्यंत विडमिनीय, दो बार ही निश्चित रूप से, ही और खलु दोनों निश्चित के अर्थ में किया गया है। वह निश्चित रूप से पतित है यदि ऐसा करता है तो। इसलिए देव माया विबूढ़ तान, वह वास्तव में भगवान के माया के द्वारा मोहित है। जो ठीक से नहीं अपने स्थिति को समझ रहा है वह माया से मोहित है, उसको उपेक्षा करना चाहिए। उपेक्षितान, उसको उपेक्षित कर दे, बहुत गड़बड़ कर रहा है तो समाज से निकाल दे। समाज से नहीं निकाले तो क्या हानि है, बैड प्रीचिंग हो गई, अब कोई नहीं समझेगा। अगर वो पतित ब्रह्मचारी है, पतित सन्यासी है और आपके साथ ही है तो आप दूसरे को नहीं समझा सकते, दूसरा आपकी बात नहीं सुनेगा। आपके साथ तो ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है, कंप्लेन करेगा। तो दो उपाय है, आप समर्थ है तो उसको प्रीच कीजिए, उस पर स्नेह कीजिए, अनुकंपा कीजिए, स्नेह पूर्वक समझाइए, सस्पेंड कर दीजिए जैसे तैसे, या निकाल दीजिए। जब बिल्कुल नहीं मान रहा है तो अपने समाज से बहिष्कृत कर दीजिए, वो कलंक खत्म हो। हम कह सकते हैं नहीं, ऐसा करने वाले हमारे यहाँ प्रश्न नहीं दिया जाता, निकाल चुके हैं, तब तो आपकी बात मानी जाएगी। और नहीं तो दूसरों को समझाएंगे आपके पास एक आदर्श है गड़बड़ करने वाला, तो लोग दिखाएंगे अरे आप लोग ऐसी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, ऐसा व्यक्ति भी है आपके साथ। इसलिए समाज से उसे उपेक्षित करना चाहिए अथवा अनुकंपया, दोनों बात करते हैं, उपेक्षिता अनुकंपया, दो विधि है। अनुकंपा पूर्वक उसको समझाइए, स्नेह पूर्वक दया करके उसको समझाइए, चांस दीजिए उसको सुधरने का, अथवा निकाल दीजिए, यह कह रहे हैं। तो इस तरह से नारद जी का प्रवचन बड़ा मधुर और बड़ा कड़ा भी है, बहुत सुंदर उपदेश शिक्षा है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत कठिन भी है। आगे भी इसी तरह की बात करते हैं, पुष्णाति लंपटम आत्मानं चे द्विजानीयात् परम ज्ञानोऽपि धुताशय किमिच्छन् कस्य का देहो वा देहो हेतु देहं पुष्णाति लंपटम। अतः आत्मानं चे द्विजानीयात् परम ज्ञान धुताशय किमिच्छन् कस्य वा हेतु देहं पुष्णाति लंपटम। ये तो केवल जीवन पोषण करने के लिए लंपट इस तरह का व्यवहार करता है। ऐसे मूर्ख और लालची व्यक्ति क्या प्राप्त कर सकता है जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, उसे निंदा करते हैं। और आगे कहते हैं कि यह शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, एक रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं, इनको बड़ा कंट्रोल में लेकर चलना पड़ता है, इसका अभ्यास होना चाहिए और इन सब शरीर से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यह जीवन भगवान के लिए मिला है, धीरे धीरे उपसंहार की ओर जा रहे हैं। और फिर महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हैं, आप सौभाग्यशाली हो, आपके घर में भगवान रहते हैं, आपको सजन संबंधी के रूप में है, जिनको हम लोग भगवान मानकर आराधना करते हैं वह आपके निजी संबंधी है, हमसे बेटर स्थिति आपका है। जितना ममता अपने लोगों से होता है वो फॉर्मेलिटी में नहीं है, आपका भगवान से ओरिजिनलिटी संबंध है, ओरिजिनल संबंध है। आप अपना भाई मानते हो, स्वजन मानते हो, और हम लोग जो भी कर रहे हैं भक्ति वो आपसे नीचे प्रशंसा भी करते हैं। तो इस तरह से देवर्षि नारद बहुत सुंदर प्रवचन किए हैं। निश्चित रूप से हम सबके लिए, किसी भी आश्रम में किसी भी स्तर में रहने वाले व्यक्ति के लिए बड़ा उपादेय है। श्रील प्रभुपाद इस पर जोर देते थे कि हमारा स्तर एकाएक सद्वासना में नहीं आ सकता, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आना चाहिए अपने स्तर को सुधारते हुए। तो ठीक है, इन सब स्थितियों को ठीक से समझकर भगवान की भक्ति करना चाहिए और कुछ विषय में बिल्कुल स्टिक रहना चाहिए। जैसा कि मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया तो आप लोग कृपा करके क्षमा कीजिएगा, लेकिन यह तथ्य है, सिद्धांत है, सत्य है कि अपने अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई हमको सन्यासी समझकर माला डाल दे वो उसका फर्ज है। मंदिर में आए लोग देख रहे हैं मुझको माला नहीं डाले, ये बड़े मूर्ख हैं, नीच हैं, इन लोगों को कोई ट्रेनिंग नहीं है, इस तरह की भावना मन में नहीं आनी चाहिए। या मेरे पास आरती आना चाहिए, मुझको प्रणाम करना चाहिए, सब नहीं, कुछ नहीं। यह गलत फहमी है, हम लोग केवल काउंटर है, काउंटर जैसे बैंक कैशियर है, वहां काउंटर पर जाकर अपना पैसा जमा करते हैं, उसको 1,00,000, 2,50,000 दे दीजिए, कभी भी कैशियर नहीं समझ सकता कि यह मेरा है, वो जानता है इसके खाता में जमा करना है। तो भगवान उद्धव से कहते हैं एकादश स्कंद में कि मुझको प्राप्त करने के लिए, मुझको देने के लिए कई काउंटर है, उसमें ब्राह्मण, वैष्णव, गाय, श्री विग्रह, गंगा, कई जगह रखते हैं कि वहां पर कुछ किया जाता है तो सीधे मुझे प्राप्त होता है। तो दुनिया के लोग जो प्रणाम कर रहे हैं आपको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, धूल में मत रहिए, अपने खाता में दे रहे हैं, वहां अकाउंट में जमा कर रहे हैं, कृष्ण के पास दे रहे हैं। और वही कैशियर मान ले कि मुझे 2,00,000 रुपया मिल गया और अपने यूज में खर्च करना चाहे तो क्या उसकी स्थिति होगी? ठीक वही स्थिति होगी जो मान सम्मान को अपना सम्मान मानता है या वो सुविधा मानता है। हमको बहुत लोग मान दे रहे हैं, हमको अच्छा खाना दे रहे हैं, दक्षिणा भी दे रहे हैं, नहीं, वो तो अपना अकाउंट में जमा कर दिए। अब लेने वाला सोचे कि हम उसके खाता में जमा कर रहे हैं कि नहीं। बाबा जी हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी बहुत प्रसिद्ध आचार्य महात्मा हुए, एक बार उनका शिष्य टोकरी में लेकर जा रहा था वहां नवदीप, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो एक सेठ 5 रुपए के सोने का सिक्का फेंक दिया बाबा जी के टोकरी में। तो आ गया उनके पास, देखे, कहे सुनो सुनो रुको, देखो ये कौन फेंका है सिक्का, पता करो पीछे। तो पीछे पूछते गए तो सेठ दरवाजे पर बैठा था, कहे उतारो, कहे कि तुमने पैसा फेंका? तो कहा कि हाँ, क्यों? कहा कि बाबा जी आप सिद्ध संत हैं, साधु महात्मा, आपकी सेवा में लग जाए मेरी कमाई तो सार्थक मुझे पूर्ण मिल जाए। बाबा जी एकदम फायर हो गए, मूर्ख नीच, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, अपना भजन साधन होता नहीं, मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जब से तुम्हारा पैसा मिला तब से मेरा टेंशन बढ़ गया है, क्या करना है इसको, कैसे करना है, नहीं अपना पैसा फेंक दिए। अब तो कांपने लगा, बाबा जी गलती हो गई है। तब कहे कि ठीक है, तुम इस पैसे को गो सेवा में या दीति विग्रह की सेवा हो रहा है वहां या वैष्णव की सेवा में लगा देना। उपाय बता दिए, लिए नहीं। अगर उसी मानसिकता के सब लोग हो जाए तो बेचारे इन कर्म जड़ों का क्या होगा। तो बाबा जी की मानसिकता में होने पर जो कर्म पिशाच लोग हैं, जो केवल काम करना ही जानते हैं, उनका परिश्रम का फल भगवान में न लगे तब तो नरक चले जाएंगे। इसलिए वैष्णव लोग थोड़ा बाबा जी से ऊपर चलते हैं, थोड़ा उदार होते हैं, उनकी संपत्ति कलेक्ट करते हैं, ठाकुर जी में लगाते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो जो लक्ष्मी को श्री को अपना स्वामी मानता है वह ऐसा नहीं होता। श्री जी के स्वयंवर की कथा भागवत में है, सबको रिजेक्ट करके लक्ष्मी विष्णु को स्वीकार करती है। दूसरा अगर साहस करता है कि हम इनको अपने अधीन कर लें, उनका पत्नी नहीं बनती, उसकी सवारी करती है, उसको उल्लू बना देती है। लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, एक पक्षी है जिसको दिन में नहीं दिखता। तो जो ज्यादा धन संग्रह करते हैं उनको उल्लू बना देती है। लक्ष्मी दिखता ही नहीं कि मंदिर में राधिका रमण के पास देना चाहिए कि कलम में देना चाहिए। तो ऐसे उल्लुओं पर कृपा करके वैष्णव लोग उनके संपत्ति को भगवान में लगाते हैं, धीरे धीरे वो शुद्ध होता है। तो यह एक वृद्धि है, थोड़ा उदार भावना है। तो प्रभुपाद उसी उदार उदात संप्रदाय के हैं, उदार भावना में है, और हम लोग इनके साथ होने के कारण यह उदारता है। लेकिन सदैव ध्यान रखें कि वह पैसा, वह मान, वह सम्मान, वह भोजन मुझे नहीं दिया जा रहा है, वो अपने अकाउंट में सब जमा कर रहे हैं। कैशियर की मानसिकता होनी चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कोई जिज्ञासा, समय तो ज्यादा हो गया।
धन्यवाद महाराज, आपने बहुत सुंदर तरीके से बहुत सारी चीजें बताई और काफी कुछ विचार करने के लिए था। तो अभी जो तुरंत मेरे मन में आ रहा था कि महाराज, आप भागवतम के 10 जो आपने टॉपिक्स बताए थे, विषय बताए थे, आप 5 पर कह के आगे दूसरे संदर्भ में आप चर्चा करने
तो मैं ऊटी के साथ ही आगे वाला छोड़ दिया, ठीक है। उतय कर्म वासना ऊटी के बाद सर्व विसर्ग स्थान पोषण ऊटी मनवंतर, मनवंतर की आगे चर्चा है। तो मनवंतर एक भगवान की शासन व्यवस्था है, मनवंतर सरकार पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक मनवंतर सरकार है। उसके 6 फैकल्टी हैं, जिसमें मनु महाराज, मनुपुत्र, सप्तर्षि, इंद्र, इंद्र के सहायक देवता और स्वयं मनवंतर अवतार, ये है मनवंतर सरकार के विभाग जो जगत चलाता है। तो मनु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, वो पद का नाम है। अलग अलग नाम वाले व्यक्ति मनु बनते हैं, एक फैकल्टी है। वहां सरकार अपने मेंबर को तृप्त करने के लिए विभाग नहीं बांटा जाता है, वो फिक्स व्यवस्था है। वो सिलेक्टेड सरकार, इलेक्टेड सरकार नहीं है, वो सिलेक्टेड सरकार है। इलेक्शन से वो सरकार नहीं बनी है। सर्वे पुरुष शासना, वो परम पुरुष भगवान के द्वारा सिलेक्टेड लोग उस सरकार में भाग लिए हैं। तो सिलेक्शन बड़ा व्यक्ति करता है, क्वालिफाइड व्यक्ति को सिलेक्शन करता है, और इलेक्शन छोटे लोग करते हैं, अपने बीच के गधा घोड़ा को चुन देते हैं। इलेक्शन तो छोटे लोग करते हैं ना, तो जैसा है वैसे लोगों को चुनते हैं, और सिलेक्शन बड़ा व्यक्ति करता है, इसलिए क्वालिफाइड को चुनता है, ठीक है। परम पुरुष के द्वारा सिलेक्टेड व्यक्ति मनु बनता है, और उनके पुत्र भी सिलेक्टेड लोग बनते हैं, मनु पुत्र। और दूसरा पद है इंद्र, तीसरा इंद्र। इंद्र एक भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर की तरह सम्मानित पोस्ट है, और उनके सहायक देवता, उनका कैबिनेट मिनिस्ट्री, अलग अलग फैकल्टी के देवता होते हैं इंद्र के साथ। और पांचवा पोस्ट है सप्तर्षि, जो धर्म को संभाल कर रखते हैं। और छठवां पोस्ट है स्वयं भगवान मनवंतर अवतार। तो इसका वर्णन है 8वें स्कंद में मनवंतर की कथा। उसी में अवंतर कथा, गजेन्द्र मोक्ष, समुद्र मंथन और ये सब निकल गया है। और तो ये बलि महाराज, ये सब अवंतर कथाएं हैं, लेकिन मुख्य लक्ष्य है 8वां स्कंद का मनवंतर का वर्णन। इसके बाद छठवा हो गया, सातवां है ईशानु कथा, एक टॉपिक है। ईशानु कथा में 3 शब्द है, ईश, अनु, कथा। ईश माने भगवान, अनु माने फॉलोअर, उनके पीछे चलने वाले भक्त और कथा। तो उसमें दो महत्वपूर्ण वंशावली का वर्णन करते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। ईशानो कथा है, नौ मस्कंद है। इसके बाद ईशानो कथा निरोध, निरोध का अर्थ है रोकना, निरोध का अर्थ है प्रलय। इस सृष्टि चल रही है, इसको रोक देते हैं, रोकते हैं। प्रलय भी तीन प्रकार की होती है, नित्य, नैमितिक, आत्यंतिक। तो प्रतिदिन कुछ हम बन रहे हैं, अपने दो दो साल के बाद फोटो खिंचा कर देखिए, पांच पांच साल के बाद तो आप ही चेंज दिखेंगे, पता नहीं चलता है, लेकिन मृत्यु रोज हो रही है। और किसी कारण विशेष से थोड़ा कुछ होता है, फिर आत्यंतिक में महाप्रलय हो जाता है। कभी कल्प में प्रलय होता है, कभी कभी पूरा प्रलय। तो इस तरह इसका भी वर्णन है द्वादश स्कंद में। और फिर निरोध मुक्ति, मुक्ति। हम झंझट में फंस गए हैं, दिक्कत में हैं, तो इसे निकलना चाहिए। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति कहते हैं जो हमारा अन्यथा रूप है, स्वरूप से हटकर, स्वरूप से हम कृष्ण के दास हैं, जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। इस स्थिति से हटकर हम दूसरे स्थिति में पड़ गए हैं और पुनः इस बाह्य अवस्था से हटकर अपने स्वरूप में आ जाना, ये मुक्ति है। मुक्ति हित्वा, हित्वा माने छोड़कर, अन्यथा रूपम अपने स्वरूप के विरोधी रूप को छोड़कर स्वरूप में स्थित हो जाना, ये मुक्ति है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। तो इस मुक्ति का भी कई प्रकार है, अनेक प्रकार है। कुछ ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, कुछ भगवान के धाम में जाना चाहते हैं, दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, कुछ भगवान के नित्य सेवा में निरंतर रहना चाहते हैं, और सुख दुख से कोई मतलब नहीं, भक्तों का अभीष्ट है। तो ये मुक्ति का भी वर्णन है, एकादश स्कंद में मुक्ति का डिटेल वर्णन भगवान करते हैं। और फिर लास्ट में है आश्रय बेस। और यह भी कहा गया है कि आश्रय ही भागवत का मूल विषय है, आश्रय जिस पर सब कुछ टिका है। श्री कृष्ण शरण मम, सब कुछ, सारा जगत जिन पर टिका है, सारी व्यवस्था जिन पर टिकी है, उनको कहते हैं आश्रय बेस, भगवान। तो इनका वर्णन दशम स्कंद में है, पूरा 90 अध्यायों में। तो एक आश्रय तत्व को ही हाईलाइट करने के लिए 9 तत्वों की व्याख्या की गई। वास्तव में भागवत का लक्ष्य केवल आश्रय को क्लियर करना है, लेकिन उसी को डिटेल प्रकाशित करने के लिए 9 तत्वों को लिया गया फिर से, क्योंकि सबका रिलेशन भगवान से। सृष्टि का वर्णन करेंगे तब भी भगवान, सर्ग का, विसर्ग का, स्थान का, पोषण, ऊति, मनमंत्र, सारा भगवान से रिलेटेड है। इसलिए आश्रय का ही व्याख्या करना मुख्य उद्देश्य है। तो इस प्रकार सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशानो कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। हरे कृष्ण।
धन्यवाद महाराज जी। महाराज, मेरा प्रश्न है कि जैसे हम लोग जैसे कहा गया हमें इंद्रिय लोलुप होना नहीं चाहिए, जो खास करके जो भगवान का समर्पण किए इंद्रियों चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि हम लोग जो है स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं, स्वास्थ्य रहने के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने लग जाते हैं,
तो क्या करें, जल्दी मर जाए। स्वस्थ रहना भी भगवान की भक्ति है, स्वस्थ रहेंगे तभी तो भजन करेंगे। मान लीजिए, देखिए रूप गोस्वामी छोटी सी पुस्तक उपदेशामृत में कहते हैं, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंघर्ष लल्यम च सगवीर भक्ति विनश्यति। तो अत्याहार प्रयासश्च ये जो वर्णन किया गया, और इसके अतिरिक्त नियमाग्रह किसमें है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। हम केवल नियमाग्रह पर बोलना चाहते हैं, पूरा श्लोक। नियमाग्रह में अग्रह और आग्रह दो विषय है, नियम अग्रह, नियम आग्रह, और आ दोनों मिलाकर आ ही होता है। तो संस्कृत व्याकरण के अनुसार अग्रह का मतलब लापरवाही, आग्रह का मतलब जीत, ये दोनों गलत है, भक्ति का विनाश करने वाला है। आग्रह मतलब अरे तबीयत ठीक नहीं, चलो मंगला आरती आज नहीं जाते, तो ये हुआ आग्रह। और नहीं कुछ भी हो जाए जाना है, तबीयत खराब है, बुखार है, जुकाम है, लेकिन बिना नहाए नहीं जाएंगे, नहा कर जाएंगे तो और ज्यादा खराब हो गया। एक दिन परहेज नहीं किए तो 10 दिन बीमार हो गए। तो ये आग्रह और अग्रह दोनों ठीक नहीं है। लापरवाही पूर्वक छोड़ना, पाठ कर रहे हैं चलो आज नहीं करते हैं कल कर लेंगे, चलो आज दूसरा काम कर लेते हैं जब रात को कर लेंगे, रात को थक गए पर नींद आ रही है, अरे नवा अपराध हो रहा है, सावधानी पूर्वक जब नहीं चलो कल कर लेंगे। तो इस तरह से जो छोड़ने वाली प्रवृत्ति है वह भी गलत है, और चित्त पूर्वक स्वास्थ्य ठीक नहीं है फिर भी करना यह भी गलत है। ठीक है, तो स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही भजन किया जा सकता है, क्योंकि सारे साधन का सारा साधन शरीर से होता है, तो इस शरीर को ठीक से रखना, इसके लिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने का अर्थ यह नहीं कि खूब पौष्टिक और खूब स्वादिष्ट चीज खाना, पौष्टिक खाना चाहिए लेकिन यह निश्चित रूप से संयमित होना चाहिए, संयमित आहार और नियमित विहार सुखी और समृद्ध जीवन की कुंजी है। तो संयमित, संयम माने कंट्रोल में, गेट पर चेक हो जाना चाहिए, अगर गेट पर ठीक से बीएसएफ वाले काम करते तो कारगिल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तो गेट पर चेक हो जाएगा तो आतंकवादी भीतर नहीं जा पाएंगे। क्या खाना है यह विचार करना चाहिए, जीभ से नहीं बुद्धि से खाना चाहिए। साधकों को जीभ के स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए आइसक्रीम, ये कोई फायदा नहीं करता है, खाली जीभ के लिए है, वह हमारे भीतर के टेम्परेचर को डाउन कर देता है, पचने में दिक्कत होता है। और ये जो चाट चारों तरफ चल रहा है, चाट नहीं चाटना चाहिए, जीभ के लिए है। तो कुछ चीज है ना जो स्वास्थ्य के लिए नहीं है, डॉक्टर लोग बेचारे बताते हैं लेकिन डॉक्टरों को भी देखा जाता है कि वो नहीं पालन करते हैं, ये समस्या, क्योंकि वो जीभ के इंद्रिय के गुलाम है। तो स्वस्थ रहने के लिए संयमित रूप में भोजन करना चाहिए, संयमित रूप। एक जगह वर्णन है कि रोटी के दुना सब्जी या फल लेना चाहिए, उसके तिगुना पानी, कम से कम पेट में जगह रहे, हवा के लिए भी जगह रहना चाहिए। स्वादिष्ट मिल गया फीस्ट तो यहां तक खा लिए, पानी का जगह है ना हवा का जगह, ये क्या तरीका है। तो इस तरह संयम पूर्वक स्वस्थ रहना चाहिए, समय से सोना चाहिए, समय से जगना चाहिए, प्राणायाम व्यायाम करना चाहिए। जो अष्टांग योग है उसमें शुरू में ही है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, तो यहां से प्रारंभ होता है, तब ध्यान धारणा समाधि, धारणा ध्यान समाधि को जाना है। तो शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है, जितना भोजन जरूरी है उतना ही आसन प्राणायाम भी जरूरी है, समझ रहे हैं। तो स्वास्थ्य का ध्यान में रखते हैं वो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के नाम पर बहानाबाजी ठीक नहीं है। हाँ बोलिए।
कैशियर का उदाहरण दिया कि कोई भी अगर हमें मान सम्मान या धन देता है तो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति हमसे मान सम्मान या धन छीनने का प्रयास करे, अधिकार जमाने का प्रयास करे तो कैसा व्यवहार करना चाहिए।
क्या
मान लीजिए कोई हमको देता है मान सम्मान देता है या धन देता है तो हमें समझना चाहिए भगवान की सेवा के कारण हमें मिल रहा है तो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए।
हाँ।
लेकिन कोई व्यक्ति हमारे से हमारा मान सम्मान अपमान करे, मान सम्मान छीने या धन छीनने का प्रयास करे तो हमें क्या व्यवहार करना चाहिए।
आपका मान सम्मान क्यों छीनेगा कोई, धन छीन सकता है, मान सम्मान क्या छीनेगा। आप अगर माननीय है, सम्मानित व्यक्ति है तो मान मिलेगा, आप यशस्वी हैं तो आपका जस मिलेगा, ऐसा नहीं चाहने पर भी मिलता है और प्राय चाहने पर नहीं मिलता है। जब आप अपना मान सम्मान बचाना चाहते हैं तो इसके लिए संघर्ष जो आज करके मूर्खतापूर्ण सरकारी योजनाएं हैं, बड़े बड़े ये करना वो करना, इसके लिए हमारे फॉरवर्ड को बैकवर्ड को अपमान हो रहा है, फॉरवर्ड लोग दबा रहे हैं, दोनों एक तरह की मानसिकता है। उनका अपमान हो रहा है, स्त्री का सम्मान होना चाहिए, ये हल्ला करने से सम्मान हो जाएगा? इस तरह से सम्मान करना चाहिए, स्त्री का सम्मान है, स्त्री को उचित शिक्षा देना चाहिए और ठीक ढंग से अपने पति तक सीमित रहे, तब उसका सम्मान होगा। जो स्त्री घर की रानी थी वह उसका जो सम्मान था वो दफ्तर की किरानी होने में ज्यादा सम्मान है। ठोकर खाती रहती है अपने बोस का और लोगों का, वही सम्मान है। वो सम्मान छीना जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है कि अपमान किया जा रहा है? जो एक सम्मान के साथ घर में रहती थी, घर के सारे प्रॉपर्टी को मालकिन थी, उसको दासी की तरह खटना पड़ता है, यह सम्मान नहीं है ना? यह छीना नहीं जा रहा है? जो इस तरह की बात कह रही है, कह रहे हैं लोग, वो छीन रहे हैं, वो अपमान कर रहे हैं। मान का ये तरीका नहीं है। वैदिक विधियों का पालन करने पर सबको यथोचित मान मिलेगा, सबको। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था जो शूद्रों को सताए, शूद्रों को ब्राह्मण का जने पहना देने से ब्राह्मण हो जाएगा? उसको प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। उसको जो सेवा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि की करके वो सम्मान मिलता था, बिना टेंशन का जीवन जीते थे, उनके विवाह उनके कार्यों को राजा देखता था, सारी व्यवस्था करता था, उसके दुख में दुखी होते थे, वह सब चीज चला गया। तो ये सम्मान की हमको जबरदस्ती छीन रहा है या नहीं दे रहा है, तो आंदोलन और रैली निकालने से सम्मान मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये सब गलत धारणा है। और मान व्यक्तित्व से मिलता है और मिलेगा, आप नहीं चाहेंगे फिर भी मिलेगा। माधवेंद्रपुरी जी को भगवान उनके लिए खीर चोरी किए, घबरा गए कि अगर हम रात भर रुक गए तो सवेरे लोग जुट जाएंगे कि अरे इनके लिए गोपीनाथ चोरी किए, चोरी किए। माधवेंद्रपुरी तो भाग गए, वहां से भोर में ही निकल गए और पूरी गए। जब पूरी जाकर अपना परिचय बतलाए कि हम यहां से आए हैं गोपाल जी के लिए चंदन लेने, तो अच्छा आप वही माधवेंद्रपुरी जिनके लिए गोपीनाथ ने चोरी किया? लो, कृष्णदास कविराज जो स्वामी कहते हैं उनसे पहले उनकी ख्याति पहुंच चुकी थी, उनसे पहले पहुंच चुकी थी, अब ना चाहकर भी मान उनको लेना पड़ा। माननीय सम्मानित व्यक्ति नहीं चाहता है मान, उसकी मजबूरी हो जाती है मान लेना, लेना ही पड़ता है और लेना ही चाहिए। इस रूप में कि लोग दे रहे हैं कभी कभी ट्रेनिंग के लिए, जैसे गुरु पूजा चालू हुआ है, एक व्यक्ति वो अपना खुद बैठकर अपना पूजा प्रारंभ किया, इतना प्रॉपर ट्रेनिंग दिए हैं, बैठकर कहे गुरु की पूजा ऐसे की जाती है, फूल चढ़ाया जाता है, आरती की जाती है, माला, गुरु पूजा यही सिखाए ना विदेशियों को, और सन्यासियों को कैसा सम्मान देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, ये सिखाए। उसका नतीजा है कि सन्यासी इतने इस्कॉन में सम्मानित व्यक्ति हैं, कभी कभी एकदम घबराहट हो जाता है कि क्या ये लोग कर रहे हैं, कैसे इतना प्रणाम करते हैं, एक लंबा सभी लोग, क्या हो रहा है, कैसे झेला जाए इसको। लेकिन इसके झेलने के लिए जब तैयारी किए, तैयार हुए तो झेलना पड़ेगा ही ना। तो क्या करें, नहीं चाहते हुए भीतर से, जहां मेरी व्यक्तिगत स्थिति है, संन्यास के बाद मैं पुणे गया, वहां राधे श्याम प्रभु समर कैंप किए थे जिसमें 700 स्टूडेंट आए थे, सभी इंजीनियर डॉक्टर, इतना प्रणाम कर रहे थे जहां तहां रोडों पर सब जगह। मैं कहा प्रभु जी क्या हो रहा है, मुझको तो बड़ा उठा लग रहा है। तो कहे कि नहीं, आप मना नहीं कर सकते, इनको तो ये ट्रेनिंग दी गई है और आपको इसको स्वीकार करने का ट्रेनिंग दिया गया है, आपको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एकदम उचित है, एकदम उचित है। अब इस तरह से स्वीकार करना पड़ेगा, करना ही चाहिए, लोग सीखें कि हमको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन मन ही मन इसको भगवान को समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लोग सबको प्रणाम कर रहे थे। एक सूरत की घटना है कि संडे को अचानक मैं पहुंच गया दोपहर में क्लास देने, भोक्तारम जग तपसा में श्लोक लिखा हुआ था बोर्ड पर, और वो प्रेसिडेंट बहुत आग्रह करने लगे वृंदावन दास जी कि मुझे बोलना था, आप आ गए तो आप बोलिए बोलिए। मैं तुरंत गया था, आधा घंटा पहले पकड़ कर ला दिए, गया तो दो तीन ब्रह्मचारी कीर्तन कर रहे थे, वो मुझको प्रणाम किए, हरे कृष्ण बैठा प्रवचन किया, प्रवचन करने के बाद आरती होना था, पट आरती चालू हुआ और लोग आकर प्रणाम करने लगे, तो वृंदावन दास जी आगे ले गए, चलो भगवान के सामने नहीं प्रणाम करना। इसके बाद हम दोनों निकले तो गेट के बाद गेट पर भी सैकड़ों लोग आकर प्रणाम कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं। दो तीन साल पहले घटना है, तो कह रहे तुम लोगों को हो क्या गया, मैं सीनियर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मुझको तुम लोग प्रणाम ही नहीं करे, ब्रह्मचारी के चक्कर में पड़े हो। तो फिर वो तो हो गया, उन लोगों से मजाक किए तो लोग उनको भी प्रणाम कर रहे थे। फिर जब हम लोग प्रसाद पाने लगे तब बात करने लगे कि आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, इतना आदर दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है, व्यक्तिगत बात करेंगे, और कोई नहीं है, हम ही दो हैं। तो कहे प्रभु जी हमको प्रणाम नहीं कर रहे हैं। अरे तब किसको कर रहे हैं, यदि हमको प्रणाम करते तो क्लास के पहले भी मैं ही आया था मंदिर में ना, केवल दो ब्रह्मचारी प्रणाम किया और कोई नहीं किया। जब मैं भगवान के वाक्य का रिपीटेशन किया, उनका प्रतिनिधित्व किया, तो भगवान की बाणी सुनने के बाद भगवान को प्रणाम कर रहे हैं मेरे थ्रू, मैं उनका प्रतिनिधित्व किया, इसलिए मुझे तैयार रहना पड़ेगा, मैं उनका काउंटर हूं भगवान का। जो गीता का और श्लोक की व्याख्या किया तो लोग मेरे मुख से मेरे बाणी से भगवान के गुणों का वर्णन सुने, इसलिए मुझको प्रणाम करने लगे, उनको भगवान की छवि भगवान के वाक्य मेरे थ्रू दिखाई दिया। इसलिए यह मानसिकता है आपकी, यानी जी हाँ मेरा वह प्रॉब्लम था। मैं दो बार प्रश्न कर चुका हूं, एक बार महाराज से, एक बार रमेश बाबा से। तो महाराज ने कैशियर का उदाहरण दिया और रमेश बाबा ने उत्तर दिया। अच्छा, आश्चर्य में बाबा पूछे, अच्छा तुमको बच्चों का प्रणाम अच्छा लगता है, बूढ़ों का खराब लगता है? मैं कहा कि बाबा जब छोटे बच्चे प्रणाम करते हैं तब तो सहज उसके सिर पर हाथ चला जाता है, लेकिन बूढ़े करते हैं तो जीत छुप हो जाता है, क्या किया जाए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, एकदम मन दुखी हो जाता है। कहते अच्छा छोटों वाला अच्छा लगता है, बड़ों वाला बुरा लगता है? कहते हैं हम तुम जैसे कीट पतंग प्रणाम के पात्र है ही नहीं, तुमको किसी का प्रणाम अच्छा लगता है या तुम्हारा पतंग है? बाबा का उत्तर कहते हैं सीधे किशोरी जी को और भगवान कृष्ण को समर्पित कर दो, टेंशन ही मत लो कौन प्रणाम कर रहा है कौन नहीं। इसीलिए तो रमेश अहंकारी कहा जाता है, मैं कुछ आशीर्वाद ही नहीं देता, कुछ बोलता ही नहीं। तो लोग कहते हैं कि रमेश बड़ा अहंकारी है, भाई रमेश बाबा बड़ा अहंकारी है, वो तो कुछ नहीं बोलता। अरे मैं क्या बोलूं, मैं क्या देता हूं, मैं क्या देता हूं, लेकिन किशोरी जी को बस कनेक्शन जोड़ देता हूं, आप लेते रहो, इनको देते रहो, बेचारी को जो जिस आशा से आए हैं उसको तुम दो, हम क्यों दे क्यों ले, अगर लेंगे तो देना पड़ेगा, अगर प्रणाम एक्सेप्ट करते हैं तो आशीर्वाद देना पड़ेगा, इसलिए हम लेना देना कुछ नहीं करते, कनेक्ट कर देते हैं किशोरी जी से। इसलिए तो बाबा कुछ लोगों की अपेक्षा है, आकर कहते होंगे आपसे भी बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी मति भगवान में लगे, ये तो कहते होंगे ना। तो कहेगी हाँ कहते हैं, ठीक है किशोरी जी का सवाल बस मैं यही कहता हूँ। बाबा कुछ लोग पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे सिर पर हाथ रख दीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए, मेरा पीठ पर हाथ रखिए, ये कीजिए वो कीजिए, तब कहते तब तो अच्छा व्यवसाय चालू हो गया, तो आशीर्वाद दे दीजिए। ऐसा नहीं, मन से लोग तंग करते हैं, ठीक है आपकी मति भगवान में लगे, ये वैष्णव का आशीर्वाद है, कृष्ण मति रस्तु राधायाम मति रस्तु, तो यह कह सकते हैं कि हाँ इतना तो वैष्णव को छूट है, इतना कह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो लेकिन अपने को प्रणाम का पात्र नहीं मानना चाहिए, बाबा समझाए। तो मैं ये बतलाया उनको, इसलिए दो महापुरुषों से मैं इस विषय में जिज्ञासा कर चुका हूँ, इसलिए ज्यादा उद्विग्न नहीं होता हूँ, और मैं मानता ही नहीं कि मुझको प्रणाम कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो अच्छी बात है कि मैंने आपसे चर्चा कर लिया, मुझे भी पता चल गया। तो ये सब बातें हैं, इसलिए कोई किसी को अपमान नहीं करेगा, करता है तो उसकी मानसिकता है, अपने अंदर सहने की क्षमता होनी चाहिए। वो कर रहा है तो क्या करेंगे, सबसे लड़ते तो नहीं जाने चलेंगे ना, हमें मान दो मान दो मान दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो अपनी मानसिकता से दुर्व्यवहार कर रहा है, वो जाने। हरे कृष्ण।
धन्यवाद।